نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحلنا دار المقامة دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا ولا يمسنا فيها لغوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پیاری سی جنت میں پہنچ سکتے اگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا الا یہ کہ اس کا رب اس کے اوپر اپنی رحمت کر دے صحابہ کرام بڑی جرات کے ساتھ اللہ کے نبی سے دین کی بات پوچھ لیا کرتے تھے کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھی کہا ہاں میں بھی جب تک میرا رب مجھ پر اپنی رحمت نہیں کرے گا میں بھی جنت میں نہیں پہنچ سکوں گا ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی یہ سورۃ فاطر کی ایک مختصر سی چھوٹی سی آیت ہے اگر آپ آیت کا نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے آیت نمبر 35 ہے آئیے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا آخری گھر کیا ہوگا ہم میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا کو گھر بنانے کی کوششوں میں جیتے ہیں اور جب گھر بن جاتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں حقیقت یہ کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے یہ دنیا ہماری راہ گزر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس دنیا کو ایک راہ گزر اور ایک کہہ لیجئے کہ وہ جگہ جس کو آج کی زبان میں آپ ٹرانزٹ لانچ کہتے ہیں یہ سمجھتے تھے کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو اب دیکھیے مسافر کی خواہش ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ ہاتھ میں سامان نہ ہو سفر کریں سہولت کے ساتھ کریں زیادہ سامان لینا عام حالات میں جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اس کی مثال ہمارے کلوزٹس ہیں آج بھی اگر آپ یہاں سے جا کر اپنے گھر کو دیکھیں تو بظاہر آپ کہیں گے میرے گھر میں زیادہ سامان نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہے اور اگر آپ ایک گھر سے بہت ہی بڑے گھر میں کیوں نہ موو ہونے لگی ہوں جب ہم چیزوں کو اپسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ارے میرے پاس اتنا سامان تھا اور ہمارے تو کلوزٹ سے ہی بہت کچھ نکل آتا ہے اور جب فضول چیزیں صرف اس سوچ سے شاید کبھی کام آ جائے گا لیکن اگر آپ نے سفر کرنا ہو اور سفر بھی آپ کے انٹرنیشنل اور جہازوں کے سفر ہوں جس میں لگیج کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ سائز کا بھی ایک لمٹ کا ایک انہوں نے ذائچہ دیا ہوتا ہے تو پھر آپ زیادہ سامان رکھ ہی نہیں سکتے لے بھی جائیں گے تو وہ ایئرپورٹ سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا ایکسٹرا پے کرنا آپ کہیں گے اس کی ورتھ نہیں ہے گاڑی میں رکھا نہیں جائے گا تو بہترین زندگی ایک مسافر کی زندگی ہے اور وہ مسافر سفر کے دوران سارے مسافروں کی توجہ کھینچ لیتا ہے جو بریف کیس کے ساتھ نو لگیج زون میں سے گزر جائے جس بورڈنگ پاس ہاتھ میں اور چل پڑے وہاں ٹریک بنے ہوتے ہیں اچھا ود لگیج ہیں تو ادھر آ جائیں ود لگیج نہیں گھر سے ہی آپ بورڈنگ پاس لے لیں چیک ان کریں اور صرف آدھا پونا گھنٹہ پہلے سیدھے گیٹ پہ پہنچ جائیں اس وقت دل کرتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہوں اور وہ بھی لوگ آپ نے کبھی سفر کے دوران دیکھے ہوں گے اللہ نے آپ کو کبھی حج یا عمرے کا موقع دیا ہوگا تو اس کو ذہن میں لے آئیے کہ جس وقت آپ کے ہاتھوں میں سامان ہوں اور ادھر سے لائے ہوئے چیزیں گفٹ لوگ آپ لائنوں میں لگے رہتے ہیں کبھی تلوا رہے ہیں کبھی اسکینرس میں سے گزاروا رہے ہیں بس اس سفر کو ذہن میں لائیے یہ ہے اس دنیا سے آنے اور جانے کا سفر آپ کا میرا اس دنیا میں گھر نہیں ہے یہ صرف ایک ٹرانزٹ لانچ ہے اور میں ریمائنڈر کے لیے بتا دوں کہ آج کا یہ لیکچر ہمارا الحمدللہ NQ سیالکوٹ سے لائیو آ رہا ہے جو ہمارا پاکستان میں سب سے پہلا آن سائٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس انسٹیٹیوٹ سے وہی محبت ہے جو پہلے بچے سے پیار ہوتا ہے کیونکہ جب یہ اسکول بنا تھا اور یہ جگہ تھی یہ تھی وہ چیز جس نے ہمیں متوجہ کیا تھا کہ پاکستان میں بھی کچھ کیا جائے तो ये सियालकोट से हमारा लेक्चर आ रहा है और लेक्चर नंबर 5 है उस सीरीज़ का, जिसको इस साल हमने इस पूरे ट्रिप में जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर का नाम दिया, कि खुश्की और तरी में फसाद फैल गया। अब वो फसाद क्या है, वो इसका इंट्रो लेक्चर जो साथी सुन चुके हैं उनको पता है कि फसाद से मुराद गोलियां चलना और हंगामे होना ही नहीं है, बल्कि खालिक का मखलूक से और मखलूक का मखलूक से ताल्लुक़ बिगड़ जाना, कमज़ोर हो जाना, रिश्तों की तमीज़ मिट जाना, मकसद हयात का ख़त्म हो जाना, शिर्क और बिदात में बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ की बुनियादों का खोखला हो जाना, ये सब कुछ फसाद है। आज के इस टॉपिक के नाते से फसाद क्या है, कि ये दुनिया जो हमारे लिए दारुल इकामा थी, हमने इसको दारुल मुकामा बना लिया। ये कैसे? अभी मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है वो सूरत फातिर की आयत नंबर 35 है। ज़रा सा अगर आप इसके टेक्स्ट पे गौर करें ना, जन्नती जब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और एकदम उनकी ज़ुबान पे जो कलमा आएगा, वो ये नहीं होगा कि हमने अपनी बड़ी मेहनतें की जी, बड़ी तहज्जुदें पढ़ के आए हैं जी, तुम्हें क्या पता हम कितना इल्म लेते थे, हम कितने नमाजी थे, कितने सदक़े करते थे, कितने खिरातें करते थे, ये बड़के नहीं वो मारेंगे, वो एक ही बात कहेंगे, अल्लज़ी अहल्लना। हमारी तो कोई औकात नहीं है, वी डोंट डिज़र्व फॉर दैट, हम बिल्कुल इसके काबिल नहीं थे जो अल्लाह ने हमें अता कर दिया। यानी एक मुत्तकी का असल काम क्या होता है, कि वो अल्लाह की तरफ हर खूबी को डाल देता है और हर खामी को अपने पल्ले में डालता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर मिसाल देखें, सूरत शुरा की वो आयात जो अगर आप में से किसी ने कभी पढ़ी हो, तो आप देखिए कि अल्लज़ी यशफीन कौन, व इज़ा मरित फहुआ यशफीन, जब मैं मरीज़ बन जाता हूँ, जब मैं बीमार हो जाता हूँ, तो वही ज़ात है जो मुझे शिफा देती है। तो मोमिन की ये शान है, मोमिन की ये औकात है कि वो हर चीज़ का सिरा अपने रब के साथ जोड़े। तो जन्नती जब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे तो उनकी ज़ुबान पे जो कलेमात होंगे वो यही होंगे कि अल्लज़ी अहल्लना, ये वो ज़ात है जिसने हमको दाखिल किया। अहल्ला वही लफ्ज़ है जो आप लोग रब इश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी में पढ़ते हैं। हल्ला युहिल्लु कहते हैं कहीं दाखिल होना, ज़ुबान की गिरा का खुलना मुराद ये है कि जो हमारी ज़ुबान में गिरें पड़ चुकी हैं उनको अल्लाह ताला तू हटा दे। तो जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम अपनी किसी नेकी, हम अपने किसी काम, हम अपने किसी वसफ़ की वजह से आज जन्नत में नहीं आए, बल्कि अल्लज़ी वो ज़ात अहल्लाना जिसने हमको दाखिल कर दिया। इसी से लफ्ज़ हलाइल अबनाइकुम बहू के लिए आता है सूरत निसा में चौथे पारे की बिल्कुल आखिरी सेकंड लास्ट आयतों में, यानी वो हलीला कहते हैं बीवी को, यानी वो औरत जो हलाल कर दी गई किसी मर्द पे। तो अहल्लाना में क्या है, दाखिल करना। कोई एक शहर को फतह करके जब उस शहर के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसके लिए भी यही लफ्ज़ आता है। कुरान कहता है कि आप अल्लाह के नबी के लिए क्या कहा जाता है, कि आप इस शहर को हलाल करने वाले हैं। सूरत बलद, क्या है सूरत बलद में, याद कीजिए छोटी छोटी सूरतें हैं ना कुरान की। मक्का के लिए कुरान क्या कहता है, ए नबी जिस शहर में आपको हलाल कर लिया गया है। तो जन्नती कहेंगे अल्लज़ी अहल्लना, और अगर इसको मैं हल्का सा घुमाऊँ तो हलाल कर दिया, यानी जन्नत में हमारा दाखला हलाल कर दिया, मुमकिन कर दिया, हमें उतार दिया जिस ज़ात ने। कहाँ, दारुल मकामा या दारुल मकामा जो कुरान के लफ्ज़ है, दार कहते हैं घर को, मकामा कहते हैं क़याम की जगह। क्या है दारुल मकामा, इसी से आपको आज का टॉपिक भी समझ आएगा। अरबी ज़ुबान के दो लफ्ज़ लिखिए, एक है इकामा और एक है मुकामा। आप में से कभी किसी को यूएई में रहने का इत्तेफाक हुआ हो, सऊदी अरब में रहने का इत्तेफाक हुआ हो, जो लोग वहाँ रहते हैं ना वो इकामा लेते हैं। अक्सर आपने सुना है इकामा मिल गया, इकामा कब एक्सपायर हो रहा है, इकामा की ये डेट है, इकामा की वो है। इकामा कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंसी को, इंग्लिश में कहूँ टेम्परेरी रेजिडेंसी। आप पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं, आपको कुछ अरसा पेपर वर्क से गुजार कर वो ग्रीन कार्ड दे देते हैं। ग्रीन कार्ड आपका इकामा है, कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर उसको हर साल आप रिन्यू कराते हैं। सेम यही असूल नॉर्वे में, आप जब वीज़ा वहाँ अप्लाई करते हैं तो वो आपको शुरू में ईयर बाय ईयर वीज़ा देते हैं, तो जो 1 साल से दूसरे साल का वीज़ा ना उसको इकामा कहते हैं। सऊदी अरब में आप जाते हैं आपको इकामा मिलता है, हर साल उसको रिन्यूअल देनी पड़ती है, ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद क्या होता है, 3 साल, 2 साल, नॉर्वे में 3 साल, आप अगर एक एक साल का वीज़ा एक्सटेंड करवाते रहे तो फिर वो आपको ऑफ़र देते हैं कि क्या आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए इधर, फिर वो आपको कुछ और प्रोसेस में से गुजार कर अपना परमानेंट कार्ड दे देते हैं, रेजिडेंसी कार्ड, उसको मुकामा कहते हैं। यदि ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, आज सारा लेक्चर हमारा इकामा और मुकामा पे है। जन्नती जन्नत के बारे में क्या कह रहे हैं, अल्लज़ी अहल्लना दारल मुकामती, वो ज़ात जिसने हमको दाखिल कर दिया परमानेंट रेजिडेंसी में। आपका मेरा आखिरी घर ये दुनिया नहीं, कब्र नहीं, हमारा आखिरी घर जन्नत होगा इंशाल्लाह। बोलिए वो परमानेंट रेजिडेंसी जहाँ जाने के बाद ला यबगू न अनहा ही वाला, सूरत काहफ में आप जुमे को पढ़ते होंगे, एक दफ़ा जो जन्नत में चला गया, और जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो वो वहाँ से मूव होना नहीं चाहेंगे। कौन छोड़े जन्नत को, मिल तो जाए, एक पाँव तो अंदर रख दें। दुनिया में बड़े से बड़े घर, खूबसूरत से खूबसूरत घर में आप दाखिल हो जाएं, 5 साल बाद शौक पूरा हो चुका होगा, फिर आप कहेंगे अब इससे बड़ा घर, इससे नया घर, इससे अच्छा घर, वह खुशी खुशी चले जाएंगे। घर से कोठी, कोठी से बंगला, बंगले से महल कासल, चलते जाएंगे लोग। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद एक दफ़ा अगर आपने उसमें कदम रखे तो कोई भी, नो वन वॉन्ट टू मूव फ्रॉम देयर। क्या दुनिया में ये जगह है? आप यहाँ सियालकोट में बैठे हैं, आपसे पूछो नॉर्वे जाना है, आप कहेंगे ये हो सकता है? आपसे कहा जाए अमेरिका जाना है, आप कहेंगे मैं तो खुशी से ही मर जाऊँ? और आप नॉर्वे और अमेरिका वालों से पूछे, वो पर तोल रहे होते हैं किसी तरह पाकिस्तान मूव हो जाए। दुनिया में इंसान को चैन नहीं, जो जहाँ होता है ना कुछ अरसे के बाद उसको वहाँ के लूप होल्स दिखने लगते हैं, उधर के ड्रॉबैक्स उसके सामने आने लगते हैं, और खूबियाँ उसके जो आंखों में वो बड़ी तितलियाँ नाच रही होती हैं ना बाहर के मुल्कों के नामों पे, सोचते तो लोग यही कहना कि एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ परियाँ होंगी, हूरे होंगी, वहाँ के दरख्तों पे डॉलर लटकेंगे, वहाँ सोना चांदी लटकता है, वो मुल्कों में तो चैन है। ये ख्वाब सिर्फ जाते ही 1-6 महीने के अंदर पूरे हो जाते हैं, जब बाथरूम भी धोने पड़ते हैं और जब काम के लिए 30-30 घंटे खड़ा होना पड़ता है, 5-5 10-10 डॉलर घंटे के लिए। फिर पाकिस्तान के बड़े घर याद आते हैं, और अगर आप कहीं यूके में चले जाएं तो ये जितनी जगह में आपका ये सिर्फ ये फ्लोर है ना, इधर 4 घर होंगे, बस वो एक कमरा उसके साथ छोटा सा अटैच बात लगा के, और एक घर है, एक इधर घर होगा, एक इधर घर होगा, एक इधर होगा, ऐसे भी घर है, एक एक कमरे के घर हैं, जिसको पाकिस्तान में आप क्वार्टर्स कहते हैं ना। सच्ची बात है, मैं ये आपका शहर तोड़ने के लिए कह रही हूँ, बुराई नहीं कर रही, खूबी है ये। नॉर्वे में सबके घर एक जैसे हैं, कोई बाय रंग बिरंगे पत्थर नहीं लगे हुए, इल्ला कोई हमारे देसियों ने अब कुछ रंग बिरंगा कर ले, एक रंग, एक डिज़ाइन, एक छत, अंदर आप कुछ भी कर ले। वो कहते हैं नहीं, हमारा मुल्क बाहर से एक जैसा लगना चाहिए, पूरी एक, और 90% घर यूरोप में मुख्तलिफ जगहों की बात करती हूँ, नाम लिए हुए, उसको आप पाकिस्तान के क्वार्टर कह लें, क्वार्टर साफ़ सुथरे हैं, साफ़ हैं, उसमें गर्मी सर्दी का इंतज़ाम है, लेकिन देर इज़ नथिंग फैंसी देयर। ये आप जो यहाँ फैंसी घरों के बाहर जो रंग बिरंगे माशाल्लाह चीज़ें देखते हैं, और हर घर दूसरे से अलग, वहाँ ऐसी इजाज़त ही नहीं है। वो कहते हैं दूसरों को क्यों दिखाओ, दिल जलेगा। अगर ये चीज़ हम अपने मुल्कों में देख लें तो इसी ने तो आज दूसरों के लिए जीना दोबर किया हुआ है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तालमुन सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमुन। आज ये हवस नहीं तो एक दूसरे के आगे जाने के लिए लाइफ स्टाइल को ऊंचा से ऊंचा करने पर रखा, इसी ने तो फिर अमीर और गरीब के बीच में नफरत डाली, इसी ने तो नौकरों को मजबूर किया ड्राइवरों को के मालिकों को मारो और इनकी चीज़ों को ले जाओ। यानी ये जो डिस्प्ले और शो ऑफ जितना हमारे मुल्कों में बाहर नहीं है, वो जूती जिसको आप हवाई चप्पल कहते हैं, वल्लाही हवाई चप्पल, रफ जूती, वॉशरूम्स में आपके बाहर पड़ी होगी, इन जूतियों में लोग एयरपोर्ट पे होते हैं, क्यों भला? कहते चलना बहुत पड़ता है, उनकी बला से, वो तो फैशन हो गया, फटी हुई पैंटें हो गई, जो भी, दे डोंट केयर। वो कहते हैं हम किस में कंफर्टेबल है, वो जूती वो जो कंफर्टेबल हो, कपड़ा वो जो नरम हो, जो गर्म हो। आपने कभी भी इतना फैंसीनेस वहाँ नहीं देखा होगा, ईजी गोइंग है, रिलैक्सड है, साफ़ सुथरे हैं, अच्छा है, बुरा मैं नहीं कह रही, मैं कंपेयर सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि आज अगर हम मुसलमान इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ अपना हम और गम घरों को बना गए, हाँ जिनको वहाँ बनाने के ना मौके मिल सके फैंसी, उन्होंने आके बैक होम में कोठियाँ और हवेलियाँ बनाई हुई हैं, वो वीरान हवेलियाँ पड़ी हुई हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा भी कोई इधर घर है। तो ये दुनिया आप सजा लें, आपका ये घर 4 कनाल पे हो जाए, 10 पे हो जाए, या 4 मरले में हो जाए, ये है क्या? दारुल इकामा, आखिरी घर दारुल मुकामा जन्नत है। जब 3-4 साल के बाद वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे देते हैं ना, उसको आप मुकामा कहेंगे। तो यहाँ अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुकामा, और मुकाम लफ्ज़ देखिए क़याम, खड़ा होना, काम युकीम क़ियामन, क़ियामत भी इसी से है, यानी वो ज़ात जिसने हमको इस हमेशा के घर में दाखिल कर दिया, मिन फ़दली ही, अपने फ़जल से, और अल्लाह से उसका फ़जल मांगा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन फ़दली का। तो क्या पता चला? पहली बात, एक इंसान, एक मोमिन का आखिरी घर जन्नत है। एक कोड़ा रखने के बराबर जगह अगर वहाँ मिल गई, खैरु मिनत दुनिया व माफीहा, जो इस दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है, अब सोचिए क्या कुछ है, पाकिस्तान से अमेरिका और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और चाइना और जापान और बड़े बड़े मुल्कों को जिन में लाइए, ए टू जी इंडस्ट्री को लाइए, खूबसूरतियों को लाइए, सूरज चांद सितारों को लाइए, सब कुछ एक पलड़े में डाल दें और जन्नत में सिर्फ एक कोड़ा रखने, कोड़ा कहते हैं विप को, एक गज जगह, इस कमरे में भी कहीं कोने में पड़ा हो तो हमें दिखेगा भी नहीं, फरमा खैरु मिनत दुनिया व माफीहा, और आम दर्जे के, अदना दर्जे के जन्नती को इस दुनिया से कई सौ गुना बड़ी जगह मिलने वाली है वहाँ। कितना खुशबख्त है जो इस चंद दिन की ज़िंदगी को बेच कर आखरत का परमानेंट घर ले लें, और कितना बदनसीब है वो जो वहाँ का हमेशा का घर छोड़कर यहाँ किराए के घर ढूंढता रहे। हर एक की ख्वाहिश होती, कहते छत अपनी हो, झुग्गी भी हो तो अपनी हो, जो लोग किराए पे रहते हैं कभी उनसे पूछिए, कहते हाय महीना गुजरते पता ही नहीं चलता, नहीं खाते नहीं पीते, घर का किराया तो देना है ना, पिछले साल जब कोरोना का सीज़न था तो लोगों को मुश्किल लगा घरों के किराए ना दे सके, क्योंकि घर तो किराए पे अब लिया है, वहाँ तो रहना ही है ना, तो ये दुनिया किराए का घर है, इधर कील भी लगाएंगे ना तो ये पराया है, इस दुनिया की कोई चीज़ आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, आप एक घर किराए पे लेते हैं तो फिर आप उसमें रहिए, किराया देते जाएं रहते जाएं, नो प्रॉब्लम, कुछ जिम्मेदारियां वो आप पे डालते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं और बहुत पाबंदियाँ होती हैं, अब ये घर जिसमें आप बैठे हैं इस कमरे में, ये किराए का हो, आपका दिल चाहता है कि मैं उधर एक दीवार बनाकर उस पिछले से कोई एक रूम बना लूँ, क्या इजाज़त देगा? नहीं देगा ना। आप कहते हैं कि मैं ये छत ज़रा नीची कर लूँ, इजाज़त देगा? वो कहेगा आप सिर्फ रह सकते हैं, चेंज नहीं करा सकते। क्या आप चाहें इस घर का रजिस्ट्री कागज़ निकाल कर उस पर अपना नाम लिखा दें, क्या आपको वो मालिक मकान करने देगा? तो ये करने की कोशिशों में हैं हम, जब हम इस जगह, इस दुनिया की ज़मीनों को अपने नाम लगाते हैं और फिर उस पर लड़ते हैं, फिर उस पर झगड़ते हैं, फिर जायदादें छोड़कर जाते हैं, तो नस्लों तक वो झगड़े लड़ाइयाँ कायम रहते हैं, जो ये सोच रहे होते हैं कि हमारे पीछे से अब हमारे बच्चों को मिलना है। आज आप देखिए कत्लो गारत तक पहुँच गए लोग, आज दुनिया में अगर आप देखें तो किस तरीके से आज माल और दौलत वालों को लोगों ने खतरों में खड़ा कर दिया, किराए के घर पे आप अपना नाम लिख रहे हैं, ठीक है वो कहते हैं आप अपनी नेम प्लेट लगा लें, इस घर में मेल आनी है आपके नाम पे आ सकती है, इट्स ओके, इस घर का बिजली का बिल आप देंगे क्योंकि आप इस्तेमाल करें, इस घर की मेंटेनेंस आपके जिम्मे है क्योंकि आप इस्तेमाल करें, आज जिस हाल में आपको दिया है कल इसी हाल में वापस लेंगे, यहाँ के तो कानून ही उल्टे हैं ना, अगर आप घर किसी को किराए पे देके तो देखिए ज़रा फिर जब वापस मिलेगा तो उसकी शक्लो सूरत क्या होगी, अगर वो भी निकल गए तो पुलिस को बुलाकर निकालना पड़ेगा वो किराया देना दें, इल्ला माशाल्लाह, हर एक ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे बुरे तजुर्बात लोगों को होते हैं, लेकिन जब वो घर छोड़कर जाते हैं ना तो वो कबाड़िए की दुकान लगता है घर, बाहर की दुनिया में ऐसे नहीं है, आज आपको घर देते हुए एक एक दीवार, एक एक बटन, एक एक पंखा, लाइट चेक कराएंगे, ये देखो काम कर रही है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये पेंट दीवार ठीक है, हाँ यहाँ एक स्क्रैच है, वो तस्वीर खींच के दिखाने की, डोंट वरी हमें पता है पहले से, जिस दिन आपने घर वापस करना है, एक साल बाद करें, 6 माह बाद करें, 2 साल बाद करें, वही वीडियो खोलकर आपको देखेंगे, जहाँ गड़बड़ है यू हैव टू पे फॉर दैट, ये इंसानियत है, आज हम तो दूसरों कहते हैं माले मुफ्त दिले पे रहे, दूसरे की है ना गाड़ी तोड़ दो, खराब कर दो, बसों में जाकर उनकी सीटों को फाड़ दो, जहाज़ों में जाकर आप उसमें जो मर्जी चीज़ें करें, ये इंसानियत नहीं थी, तो अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान इंसानियत से दूर हो गया, मुसलमान की बात कर रही हूँ मैं, इंसान की बात नहीं कर रही, हमारा दीन जो वाकई इस्लाम था, जो मुस्लिम बनना सिखाता है, जो दूसरों को सहूलत देना देता है, वो दीन लोगों को आज क्या लगता है, बस अपनी फिक्र है, खुदगर्जी है, और दूसरों को नुकसान दे लो कोई बात नहीं, इसीलिए तो हमारा आज इस्लाम दूसरों के लिए एक बदनामी का जरिया बन गया, जन्नती जन्नत में जाने के बाद कहेंगे शुक्र है अपने घर आ गए, कभी आप सफ़र के बाद बहुत अरसा बाहर हैं और हर जगह आपको खैर ही मिलती है, हर जगह आपको मोहब्बतें मिलती हैं, घर में वो खाने रोज़ पकाते हैं जो आपको सफ़र में मेहमान बन के खाने पड़ते हैं, आप अपने लिए इतना अच्छा बिस्तर, इतने अच्छे तौलिए, इतने अच्छे कंफर्टेबल किस्म के माहौल को करते हैं अरेंज, जितना आपको मेहमान बनकर कोई देना चाहता है, हर मुमकिन कोशिश करते हैं, आप गरीब के रिश्तेदार के भी घर जाए ना, वो भी आपको अंदर से साफ तौलिया निकाल के देगा, ये नया साबुन है, ये ब्रश है, ये पेस्ट है, अपने घर में आप रफ एंड टफ रहते हैं, आप कहते हैं यूज चीज़ें वो यूज़ करो। इसके बावजूद जब आप अपने घर आते हैं तो क्या सुकून मिलता है, इजी, कि हम किसी पे बोझ नहीं, आज हमें किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि हज उमरे से भी वापस आए ना तो लोग कहते हैं अल्लाह के घर से आने के बाद भी अपना घर याद आने लगता है। इस दुनिया में रहते हुए अगर आपको मुझे अपना आखिरी सफ़र, आखिरी घर याद आ रहा है, तो दैट इज़ द थिंग जो हमें याद रखनी थी। और उम्मत मुस्लिमा की तो उम्रें भी बड़ी थोड़ी थी, किसी ने कहा कि उनकी उम्र सिर्फ 60-70 साल होगी, कहा जी, कहा अच्छा फिर वो तो कच्चे घरों में रहेंगे, यानी क्या 60-70 साल के लिए घर बनाना, वो तो कच्चे घरों में रहेंगे। और आज कोई आकर देखे, बाहर के मुल्कों में भी याद रखिए ज़्यादा घर जो है वो मुसलमानों के ही हैं, गोरों के पास इतने पैसे भी नहीं होते शायद, इल्ला माशाल्लाह। किसी इलाके में आप जाएं 90% अच्छे घर, बड़े घर, खूबसूरत घर ओन्ड बाय मुस्लिम्स, क्योंकि हमें हमेशा मुस्तकबिल की फिक्र होती है, वो आज में जीते हैं हम मुस्तकबिल में जीते हैं, इसलिए हमें शुगर हो जाती है वक्त से पहले, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज तो सबने खा लिया ना, सुबह नाश्ता किया ना, और उम्मीद है ना कि आज रात तक, चलो अभी दिन में तो खाना भी नहीं है, रात तक कुछ ना कुछ घर में है ना, खा लेंगे ना, तो फिक्र किस बात की, आज के लिए सब है तो ख़त्म। अब तो बादशाह है, फरमाया जिसको किफ़ायत का रिस्क मिल गया, जिसके पास आरामदेह सवारी है, घर है वो बादशाह, जिसके अच्छी बीवी है, जिक्र करने वाली जुबान है, मोहब्बत करने वाली बीवी है, शुक्र वाली बीवी है, वो बादशाह, तो इधर तो सारे बादशाह हैं फिर। लेकिन हमारे आज नहीं, हमारे कल ने हमारी रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं, हम अपने इस दुनिया के मामलों को इस तरह से अपने लिए बना लेते हैं कि शायद उसके बाद लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो क्या पता चला कि जिसने इस दुनिया में अपने दिल को लगाना है तो वो बड़ा ही ना समझ है। दारुल मुकामा की फिक्र कीजिए, दैट इज़ आवर लास्ट डेस्टिनेशन। चूँकि हम ट्रेवल बहुत करते हैं तो मुझे उसी की मिसालें याद आ जाती हैं, आप अगर अमेरिका से निकलें और कई दफ़ा बीच में कई स्टॉप्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, फिर कहीं आखिरी डेस्टिनेशन है, तो वो जब आपको लेती हैं, बोर्डिंग पास आपको मिलता है या लगेज होते हैं, तो वो हमसे एक सवाल पूछते हैं, डू यू वॉन्ट टू पिक योर लगेज एट योर डेस्टिनेशन, यानी आप अमेरिका से निकले, आपका पहला स्टॉप लंदन में, लंदन से दूसरा स्टॉप आपका डबलिन में, डबलिन से आपने नॉर्वे आना है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको अपना लगेज कहाँ चाहिए, ऑफ कोर्स हमें नॉर्वे में चाहिए, कौन कहता है नहीं पहले लंदन में हमारे बक्से खोल देना, फिर वहाँ से उठा उठा कर फिरेंगे, तो फिर हम उनको डबलिन में डालेंगे, फिर डबलिन से उठाएंगे, हम कहते हैं भाई ये हैंड कैरी भी लेके वहीं डाल दो, खाली हाथ, वी वॉन्ट टू डाई एम्प्टी। जब कोई ये पूछते हैं ना कि वॉट इज़ योर लास्ट डेस्टिनेशन, तो मैं अक्सर उनको एक शऊर देने के लिए कहती हूँ पैराडाइज, फिर एकदम उनको समझ आ जाती है कि ये किसी और मूड में है। तो आपकी मेरी लास्ट डेस्टिनेशन, आखिरी घर, आखिरी आरामगाह अमूमन हमारे यहाँ कब्रों पे लिखा होता है, कब्र आखिरी आरामगाह नहीं है, वो इन बिटवीन एक पैसेज है, हमारी आखिरी जगह जन्नत होगी, और वहाँ हम पहुँचेंगे मिन फजली ही, उसके फजल से, फजल कहते हैं एक्स्ट्रा को, उर्दू में लफ्ज़ सुनते हैं फजूल चीज़ें, फजूल फाउल के वजन पे एक्स्ट्रास, हेल्पफुल फजूल, बहुत सारे फजल नाम के लोगों ने ये मुआहदा किया था जो अल्लाह के नबी के बिल्कुल जवानी के दौर का था, उसको हल्फुल फजूल कहते हैं। तो क्या पता चला कि जन्नत मेरे आपके आमाल से नहीं मिलनी, पैसे ही नहीं है इतने, थोड़े से जमा करते हैं वो और महंगी हो जाती है, आपका बच्चा लेना चाहता है आईपैड, आप कहते हैं पैसे जमा करो तो ले लो, वो पैसे जमा करता है थोड़े थोड़े थोड़े, खाना भी नहीं लेता बाहर से, स्कूल से भी ऐसे ही आ जाता है, आप ही उसको लंच देती हैं ताकि मेरे पैसे जमा हों और मैं एक आईपैड ले सकूं। अब आईपैड के लिए जो पैसे, मिसाल है उसने 1,000 रुपया जमा कर लिया, दुकान पे ले गए कि भाई आईपैड चाहिए, अब जब वो देखा तो सबसे सस्ता उसमें 1500 का था या 1800 का था, मिसाल दे रही हूँ, मुझे पता भी नहीं इधर कितने का आता है, अब बच्चे का मुंह लटक जाता है। लेकिन आप ये जानती हैं कि आपके बच्चे ने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए, इसने पैसे ज़ाया भी नहीं किए, भूख भी सही, फालतू भी नहीं दिया लिया, तो आप क्या कहते हैं, कोई बात नहीं ये दो बाकी मैं डाल दूंगी, दैट इज़ मिन फजली ही, आपकी मेरी कोशिशें अल्लाह देखेगा, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी कोशिशें देखी जाएंगी, सायकुम, तुम्हारी कोशिशें, अल्लाह ताला तुम्हें देखना चाहते हैं, वन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा, तो जब अल्लाह ताला देखेगा कि हम सिंसियर हैं, हम संजीदा हैं, हमने ज़िंदगी फजूल खर्चियों में नहीं खर्च की, हमने अपना माल फजूल नहीं खर्च किया, हमने अपनी स्किल्स फालतू ज़ाया नहीं की, हम जिस चीज़ से जन्नत खरीद सकते थे उस नोट से हमने दुनिया की बेकारियात नहीं खरीदी, लगवियात नहीं खरीदी, बेहूदियात नहीं खरीदी, शैतानी चीज़ें नहीं खरीदी, एक एक की जगह दस दस अपनी ज़ात पे नहीं लगाए, तो फिर भी हमारे पास कुछ नहीं इकट्ठा हुआ। जो रेजगारी है बाकी अल्लाह कहेगा मिन फजली ही, मैं अपने फजल से दे दूंगा। और जब जन्नत में गए तो मिला क्या, ला यमस्सुना फीहा नसबन, हमें तो यहाँ कोई थकन ही नहीं लगती, काम ही कोई नहीं तो थकन कैसे होगी। नसब कहते हैं थकन को। फैज़ा फरक्ता, बोलिए आयत। फन सब, जब आप फारिग हो जाएं तो क्या करें, मेहनत करें। नसब कहते हैं मेहनत को। जन्नत में कोई काम नहीं होगा। थकन कब होती है, जब बंदे को मज़ा नहीं आता। आप कोई काम बोझल दिल से करें और आपको करना नहीं था पर करना पड़ा, थोड़े से काम के बाद थक जाएंगे। आपको वॉक नहीं करनी थी, कोई ज़बरदस्ती आपको ले गया, आप बस वो कोने तक जाकर कहेंगे मैं थक गई हूँ। और अगर आपको पैशन था कि मैंने वॉक करनी है, आपको मज़ा आ रहा है, आपको अपना वेट लूज़ करना है, आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, तो आप 2 किलोमीटर के बाद कहेंगे एक और ना चल ले। जन्नत में बोरियत नहीं है। अब देखिए ना, दुनिया में जब बंदा फारिग होता है तो बोर होने लगता है। लॉकडाउन के दिनों में जब बच्चे घरों में रहे, मर्द घरों में रहे, तो अक्सर लोग डिप्रेस हो गए, एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। जन्नत में काम कोई नहीं है, लेकिन वला यमस्सुना फीहा लुगूब, फिर भी उसमें कोई बोरियत नहीं है, कोई मलूल नहीं होगा, बंदा थकेगा भी नहीं और फारिग रहने की वजह से बोर भी नहीं होगा। दुनिया में इंसान इवन मरी आप चले जाए ना, और स्नो होने लग जाए और आप होटल के कमरे में बंद हैं, तब बोर हो जाएंगे। ना भी बर्फ़ हो, एक दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, सेम जगह पे 3 से 4 दिन रहना पड़े तो आपको समझ आएगी कि नहीं भाई बस अब घर चलते हैं। सिर्फ जन्नत वो जगह है जिसका पैकेज लेकर अगर आप चले गए तो वहाँ आपको क्या मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी जिसका आप यहाँ बैठकर तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत बनाई है इसे। तो इतनी बात का खुलासा क्या है कि इस दुनिया से अगर आप और मैं सहूलत से जाना चाहते हैं तो दिल इधर ना लगाएं। वो कहते हैं ना, जगह जी लगाने की नहीं है। गरीब की जान आसानी से निकल जाएगी, पैसे वाले की जान और जिसकी पैसे में जान हो उसकी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। आप देखिए कि कुछ लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं ना, जॉब्स लग जाती हैं। मिसाल है कि कोई दुबई जाता है, वहाँ उसकी 1,000 पे है, पूरा महीना काम करके 1,000 पे लेता है, जो आपके 46,000 बन जाएंगे। एक वो है जिसने वहाँ जाकर कोई कारोबार शुरू कर दिया, और जब कारोबार शुरू किया तो उसमें तो उसको कह लीजिए कि 1 हफ्ते में इतने मिल जाएँ, ऐसे ऐसे वो लखपति करोड़पति बनने लग गया। बिलफर्ज गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आ जाए, सब देसियों को निकाल दो। सबसे ज़्यादा दुख उसको होगा जो वहाँ करोड़ों कमा रहा था। वो गरीब जिसने वहाँ 1,000 ही दिरहम कमाना था, वो कहेगा अच्छा चलो छोड़ो, पाकिस्तान भी जाकर इतनी मेहनत करके तो मैं कमा ही लूँगा। वो खुशी खुशी आएगा, चलो जान छुटी, बीवी बच्चों से दूर था, माँ बाप की आंखों से दूर था, मैं कर लेता हूँ मेहनत। लेकिन हार्ट अटैक उसको होगा जिसके करोड़ों पे पाबंदी लग रही है। इस दुनिया से अगर आसानियों से जाना है, वन नाजियाती गर्का वन नाशिताती नाश्ता, अल्लाह ने दोनों अंजाम दिए हैं। मोमिन की रूह बड़े आराम से निकल जाती है, वो तो पहले से तैयारियां कर रहा होता है। काफिर की रूह छुपती फिरती है क्योंकि उसका दिल नहीं करता। तो याद रखिए, जहाँ चीज़ें होती हैं ना वहाँ दिल लगता है। जहाँ से चीज़ें उठ जाएं, सामान आपका इस घर से उठ जाए, एक रात आप नहीं रहेंगे, आप कहेंगे नए घर में जाके रहेंगे, चाहे वहाँ पोटले पड़े हैं, गांठों में सामान है, अभी सामान खोला ही नहीं, आप कहते बाजार से रोटी ले आएंगे, इधर क्या करूँ, इधर तो मेरा टूथब्रश भी नहीं है। घर उसको कहते हैं जहाँ आपकी चीज़ें हैं। तो आपको मुझे इस दुनिया से निकलकर अगली दुनिया में जाना है।